ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रेस स्वतंत्रता के दायरे को संकुचित करने के हिसाब से कानून लाने के पक्ष में सरकार नहीं है, नेकपा अध्यक्ष प्रचंड का कथन। देश के विकास और समृद्धि के काम में जनता को सहयोगी बनना चाहिए, उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का कथन। और अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए संपन्न हुए मतदान के दौरान आज एक पोलिंग सेंटर पर हुए ब्लास्ट में 15 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष प्रचंड ने कहा, हमारी पार्टी और सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में है। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि मौजूदा सरकार संविधान में व्यवस्था की गई प्रेस स्वतंत्रता के प्रतिकूल कोई कानून लाने या प्रेस के दायरे को संकुचित करने के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस अन्य किसी के नियंत्रण या नियमन से नहीं बल्कि पत्रकारिता जगत के ही नियमों से निर्देशित होना चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए कि कई बार संचार माध्यमों से न्यूनतम नैतिकता तक का ख्याल किए बिना विभिन्न आक्षेप लगाए जाते हैं और दुष्प्रचार किए जाते हैं, उन्होंने इसका प्रतिवाद करने का पत्रकारों से आग्रह किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने कहा कि नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन के साथ साथ संविधान निर्माण और नेपाल के आर्थिक विकास में भरत मोहन अधिकारी के योगदान हमेशा स्मरणीय रहेंगे। भरत मोहन अधिकारी स्मृति फाउंडेशन द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल ने स्वर्गीय अधिकारी द्वारा अपना गांव स्वयं बनाए और वृद्ध भत्ता जैसे लोकप्रिय कामों की गई शुरुआत का स्मरण किया था। मौके पर राधाकृष्ण मैनाली, कमल कोयराला, भरत मोहन अधिकारी लगायत वामपंथी नेताओं ने स्वर्गीय अधिकारी के विचारों और योगदानों की प्रशंसा की थी। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कहा कि देश के विकास और समृद्धि के कामों में जनता को सहयोगी बनना चाहिए। काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 द्वारा आसन्न त्योहारों के संदर्भ में आज लाजिम पार्क में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल ने विकास के काम को आगे बढ़ाने के दौरान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने जैसी गतिविधि न करने का जनता से आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश 82 वर्षीय केशव प्रसाद उपाध्याय का निधन हो गया। विक्रम संवत 1994 मार्क्सिस्ट 20 कतिक को सिरहा में जन्मे पूर्व प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय ने 2020 में टटल धुरा इलाका अदालत के न्यायाधीश के रूप में न्याय सेवा में प्रवेश किया था। विक्रम संवत 2056 से 2059 तक वे प्रधान न्यायाधीश पद पर काबिज रहे। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा कि मौजूदा सरकार के असंतुष्ट जनता को कांग्रेस को चाहिए कि ये अपनी ओर आकर्षित करे। नेपाली कांग्रेस लमजुंग काठमांडू संपर्क समिति द्वारा आज काठमांडू में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता पौडेल ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के हित में काम करने में नाकाम रही है, जिससे बड़ी तादाद में जनता रुष्ट है। ये बताते हुए कि मौजूदा समय में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को आलसी होकर नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि संविधान निर्माण का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी में सिद्धांत का निराकरण न होने के कारण ही वो शी जिनपिंग पथ के विचार विमर्श में जुटी हुई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद पांसकोटा ने कहा कि सामुदायिक विद्यालयों की शैक्षिक अवस्था सुधारोन्मुख है। नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन जिला समिति द्वारा आज काभ्रे की बनेपा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पांसकोटा ने ये बात कही। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
जम्मा 9 रुपियाँमा 55 MB डाटा पाइन्छ।
साँच्चै सस्तो नेपाल टेलिकमको डेटा प्याकमा बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 9 रुपियाँमा 55 MB डाटा प्याक। *14#15# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा कि शांति और सुरक्षा बहाल करने में समाज के सभी पक्षों का सहकार्य जरूरी है। आज काठमांडू में ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र के एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री अर्याल ने कहा कि सरकार के सिर्फ अकेले कोशिश करने से समाज में शांति और सुशासन संभव नहीं है। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने कहा कि भारत के साथ खुली सीमा के कारण शांति सुरक्षा को प्रभावकारी बनाने में चुनौती है। आज जनकपुर में प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत ने ये बात कही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान आज एक पोलिंग सेंटर पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 15 लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच मुख्य मुकाबला है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तालिबान से बातचीत खत्म करने के ऐलान से अफगानिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। तालिबान ने मतदान प्रक्रिया से लोगों को दूर रहने की धमकी दी थी। इसके मद्देनजर तालिबानी आतंकवादियों से मुकाबला के लिए अफगानिस्तान में 10,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता होने से पहले ही रद्द हो गई थी। काबुल में अमेरिकी सैनिक की हत्या किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी क्षण में शांति वार्ता को रद्द कर दिया था। ट्रंप के इस फैसले के बाद तालिबान ने कहा था कि इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा और अब ज्यादा अमेरिकियों की जाने जाएंगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि जब तक हमें इस बात का भरोसा नहीं होता है कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक है, हम अपने सैनिक वापस नहीं बुलाएंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रेस स्वतंत्रता के दायरे को संकुचित करने के हिसाब से कानून लाने के पक्ष में सरकार नहीं है, नेकपा अध्यक्ष प्रचंड का कथन। देश के विकास और समृद्धि के काम में जनता को सहयोगी बनना चाहिए, उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरियाल का कथन। और अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए संपन्न हुए मतदान के दौरान आज एक पोलिंग सेंटर पर हुए ब्लास्ट में 15 लोग घायल। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।